नकुल की बात से वहां का माहौल अचानक सर्द हो गया था और सब लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आस्तिक की तीखी निगाहें नकुल पर ही थी और उसका चेहरा सख्त हो गया था। वहीं दूसरी तरफ अरुणिमा का चेहरा घबराहट से नीचे झुक गया था। इस बार सुजीत जी ने गुस्से में नकुल की तरफ देखा और कहा, ये क्या बेहुदा मजाक है? तुम्हें कहाँ, क्या और कैसे बोलना चाहिए इसकी जरा भी समझ नहीं है क्या? अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बात कैसे शुरू की जाए तो चुपचाप बैठे रहो। हम मिस्टर रायचोंग के कितने इम्पोर्टेंट गेस्ट बनकर आए हैं, उन्होंने हमें अपने घर पर इतना सम्मान दिया है और तुम यहाँ आकर उनकी फैमिली के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो। हमें तुम्हें अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। अपने पिता की बात पर नकुल ने जल्दी से आस्तिक और अरुणिमा की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रायचंद, मेरा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं था। दरअसल मैं थोड़े खुले विचारों का हूँ, इसलिए किसी के सामने भी बहुत जल्दी अपनी बात रख देता हूँ। मैं भूल गया था कि इंडिया में कल्चर है लोगों को बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना होता है, ताकि सामने वाले को बात बुरी ना लगे। सुजीत जी ने आस्तिक की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रायचंद, इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर ऐसी बकवास बातें करेगा, पता होता तो इसे कभी अपने साथ नहीं लाते। हमें तो लगा था कि आगे जाकर ये हमारा बिजनेस ज्वाइन करेगा, इसलिए इसे लोगों से मिलना जुलना आना चाहिए, पर शायद हम गलत थे। इसे अभी और वक्त लगेगा चीज़ों को सीखने के लिए। आस्तिक की निगाहें अभी भी नकुल पर ही थीं। उसने एक नज़र सुजीत जी की तरफ देखा और कहा, नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल नकुल ने वही कहा जो उसने देखा है, और उसने जो देखा है वो गलत नहीं है। अरुणिमा एकदम हैरानी से आस्तिक की तरफ देखने लगी। आस्तिक ने नकुल की तरफ देखा और कहा, तुमने सही कहा, उस वीडियो में मेरी बीवी ही थी जो मेरे कमरे में किसी गैर मर्द के साथ थी, और तुमने ये भी सही पहचाना कि उस वीडियो को हटाने में मेरा ही हाथ था। दरअसल मैं नहीं चाहता था कि लोग उसे एंटरटेनमेंट के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें, पर वो वीडियो पूरी तरह से बनावटी और दिखावटी थी। अगर तुमने उसे ठीक से देखा है तो तुम्हें याद होगा कि उसमें अरुणिमा नशे की हालत में थी, जबकि उसने आज तक कभी नशा नहीं किया, ना ही शराब को हाथ लगाया है। ऐसे में उसे बेहोश किया गया था और उसी हालत में वो वीडियो शूट किया गया। ये बस एक गलती थी और कुछ भी नहीं, और गलती को आस्तिक रायचंद कभी तवज्जो नहीं देता। मेरी बीवी पहले जैसी थी अभी भी वैसी ही है। आस्तिक की बातों से अगर कोई सबसे ज्यादा हैरान था तो वो खुद अरुणिमा थी। उसे लगा ही नहीं था कि आस्तिक कभी ऐसा भी कहेगा। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। कुणाल की नजरें दोनों पर ही टिकी थीं। उसने अरुणिमा को देखते हुए कहा, सच में मिसेज रायचंद, आपको धोखे से नशे की चीज दी गई थी और तभी आपके साथ ये बेहुदा हरकत हुई थी। हालांकि नकुल की बात बहुत ही सिंपल थी, वो उनसे सिर्फ पूछ रहा था, लेकिन उसके शब्दों में छुपा कटाक्ष अरुणिमा साफ महसूस कर सकती थी। ये पहली बार था जब अरुणिमा आस्तिक के अलावा किसी और से नजरें मिलाने से कतरा रही थी। उसे नकुल से पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही थी, और इस वक्त उसके सबसे करीब आस्तिक ही था। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो उसके पास बैठा हुआ था, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आस्तिक ही था जिसे वो जानती थी। अरुणिमा ने धीरे से आस्तिक के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और उसकी उंगलियों को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। आस्तिक का हाथ सोफे पर रखा हुआ था और अरुणिमा की ड्रेस की वजह से वो हाथ दिख नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही अरुणिमा ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, आस्तिक की नजरें अपने हाथ की तरफ गईं। अरुणिमा के हाथ में हो रही कंपन आस्तिक अपनी उंगलियों पर महसूस कर सकता था। वो देख सकता था कि इस सवाल से अरुणिमा कितनी ज्यादा घबरा रही थी। आस्तिक समझ गया कि अरुणिमा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी, और ये सवाल वैसे भी जवाब देने लायक था नहीं, इसीलिए उसने अरुणिमा की उंगलियों को कसकर अपनी उंगलियों में फंसाया और सबकी तरफ देखते हुए कहा, डिनर तैयार है, पहले खाना खा लेते हैं, बातें तो होती रहेंगी। किस्मी ने डाइनिंग टेबल पर सारी डिशेज अरेंज कर दी थी। उसके साथ वहां पर एक और मेड थी जिसने उसकी मदद की थी। आस्तिक और नकुल एक साथ बैठे हुए थे, जबकि सुजीत जी अपनी फैमिली के साथ सामने की तरफ बैठे थे। सब लोग अपना अपना डिनर कर रहे थे और साथ में खाने की भी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अरुणिमा की निगाहें रह रहकर कभी आस्तिक पर जातीं तो कभी नकुल पर। आस्तिक एक हाथ से स्पून पकड़कर डिनर कर रहा था और बाकी लोगों से हंसते हुए बात भी कर रहा था, जबकि दूसरे हाथ से उसने अरुणिमा का हाथ थामा हुआ था। आस्तिक के इस तरह सपोर्ट करने से अरुणिमा थोड़ी रिलैक्स महसूस कर रही थी, लेकिन जब भी उसकी नज़र नकुल पर जाती तो उसे उसकी वो नज़रें अच्छी नहीं लग रही थीं। इसीलिए उसने फैसला कर लिया कि वो नकुल के साथ आई कांटेक्ट नहीं करेगी। उसने अपना पूरा ध्यान खाने की तरफ केंद्रित कर दिया। डिनर खत्म होने के बाद सारे जेंट्स बार काउंटर एरिया में पहुंच गए थे। आस्तिक वहां स्मोकिंग कर रहा था, जबकि नकुल और सुजीत जी के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। निर्मला राय और अरुणिमा इस समय सोफे पर बैठी हुई थी। अरुणिमा ने अभी अभी किस्मी को निर्मला जी के लिए कॉफ़ी लाने के लिए भेजा था और वो किचन में कॉफ़ी लेने गई थी। निर्मला जी एक नज़र अरुणिमा को देखती हैं और फिर आस्तिक की तरफ देखती हैं, जो इस वक्त सुजीत जी और नकुल से बातें कर रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़रें अरुणिमा पर भी जा रही थी। ये देखकर निर्मला जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उन्होंने अरुणिमा से कहा, लकी गर्ल। अरुणिमा किसी ख्याल में खोई हुई थी, लेकिन निर्मला जी की बात सुनकर उसने हैरानी से उनकी तरफ देखा और पूछा, जी आपने कुछ कहा? निर्मला जी हंसने लगी और बोली, मैंने कहा मिसेज रायचंद आप बहुत लकी हैं कि आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला है। जिस तरह से मिस्टर रायचंद आपका सपोर्ट करते हैं और हर वक्त आपकी साइड लेते हैं, ऐसा लाइफ पार्टनर बहुत नसीब वालों को मिलता है। निर्मला जी की बात सुनकर अरुणिमा के चेहरे पर एक गमगीन मुस्कान आ गई। वो मुस्कान पूरी तरह से झूठी, नकली और फीकी थी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पहले निर्मला जी और फिर आस्तिक की तरफ देखा। आस्तिक की नजरें अभी अभी अरुणिमा पर ही थीं, लेकिन तभी मिस्टर राय ने कुछ कहा जिससे आस्तिक उनकी तरफ देखने लगा। अरुणिमा ने अपनी फीकी मुस्कान के साथ हल्का सा सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा लाइफ पार्टनर नसीब में ही मिलता है और मैं चाहती हूँ कि ऐसा नसीब किसी का भी ना हो। अरुणिमा ने खुद को बहुत मजबूती से संभाल रखा था ताकि उसकी आंखों से आंसू ना गिरे। वो किस हालात से लड़ते हुए वहां बैठी थी, ये सिर्फ उसका मन ही जानता था। मिसेज राय मुस्कुराते हुए अरुणिमा से बोली, तो मिसेज रायचंद फ्यूचर का क्या प्लान है? अरुणिमा ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आंटी जी प्लीज आप मुझे मिसेज रायचंद के बजाय अरुणिमा ही कहिए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं और ये मिसेज रायचंद सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही हो। बेहतर यही होगा कि आप मुझे मेरे नाम से पुकारें। मिसेज राय के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है अरुणिमा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारूं तो ऐसा ही होगा। वैसे भी तुम्हारा नाम बहुत प्यारा और खूबसूरत है। फिर उन्होंने पूछा, तो बताओ अरुणिमा आगे क्या प्लानिंग है? अरुणिमा मुस्कुराते हुए अपने कंधे उचकाते हुए बोली, पता नहीं, शायद आस्तिक का यहाँ कोई इंपॉर्टेंट काम है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता हम वापस मुंबई नहीं जा सकते। मिसेस राय उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, अरे अरुणिमा मैं तुम्हारे फ्यूचर के बारे में पूछ रही थी, मतलब कि आगे क्या प्लान किया है। जहां तक मैंने न्यूज में देखी है अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हारी और आस्तिक की पहली एनिवर्सरी कम्प्लीट हुई है, तो अब तुमने बेबी प्लानिंग के बारे में कुछ सोचा होगा ना?
अरुणिमा का दिल एक बार फिर से बैठ गया। उसने तो कोई बेबी प्लानिंग की ही नहीं थी, बल्कि जो भी प्लानिंग थी वो सब आस्टिक की थी। पहले उसे प्रेग्नेंट करने की और अब उसे प्रेग्नेंट न करने की, ताकि उसका फिगर खराब ना हो। आस्टिक को बच्चे नहीं चाहिए, वो बस अरुणिमा की बॉडी से ऑब्सेस्ड है। और वैसे भी आस्टिक जैसे इंसान के साथ वो कभी बच्चे नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो आस्टिक उसे जान से मार देगा। और अगर उसने ऐसा नहीं भी किया और अरुणिमा की बच्चा पैदा कर भी दिया तो भी वो सारी जिंदगी आस्तिक के साथ एक कैद में रह जाएगी। मिसेज राय ने अरुणिमा के कंधे पर हाथ रखा, जिससे वो होश में आई और झटके से उनकी तरफ देखने लगी। मिसेज राय ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैंने तो बस एक सीधा सा सवाल पूछ रही थी। अरुणिमा घबरा गई लेकिन जल्दी से बोली, नहीं कुछ नहीं, दरअसल हमने अभी बेबी के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है। सच कहूँ तो आस्तिक और मैंने अभी इस बारे में सोचा ही नहीं। बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और मुझे नहीं लगता कि अभी हम दोनों इसे संभालने के लिए तैयार हैं। अरुणिमा की इस बात पर मिसेज राय हंस पड़ी और बोली, क्या बच्चा है या कोई कंपनी शुरू करने वाली हो जिसे संभालने की बात कर रही हो? अरे बच्चे तो खेलते कूदते अपने आप बड़े हो जाते हैं। और जहाँ तक तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो ये तो तभी सामने आएगी जब तुम सच में माँ बनोगी। अरुणिमा के चेहरे पर निराशा थी, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। वो चुपचाप मिसेज राय की बातें सुन रही थी। मिसेज राय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अरुणिमा मेरी शादी को 38 साल हो गए हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि हर हस्बैंड वाइफ की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब उनकी जिंदगी में उनका बच्चा आता है। अब मुझे और मेरे हस्बैंड को ही देख लो, शुरुआत में हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी और ना ही हम एक दूसरे को पसंद करते थे। हम तो एक साथ एक छत के नीचे रहना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि मरने से पहले वो अपने पोते को देखना चाहती हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें बेबी प्लानिंग करनी पड़ी। और यकीन मानो, जिस दिन से मैं प्रेग्नेंट हुई और जब तक मेरा बेटा पैदा हुआ, तब तक मैंने हर दिन अपने हस्बैंड को बदलते देखा। मेरी प्रेग्नेंसी का एक एक दिन ऐसा था जैसे सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड ने भी उसे जिया हो। और तुम्हें पता है, जिस दिन मेरे बेटे ने पहली बार मेरे पेट में हलचल की थी और उसके पापा ने उसे महसूस किया था, उस दिन वो इतने खुश हुए थे कि मैंने पहली बार उन्हें रोते हुए देखा था। निर्मला जी ये सारी बातें जिस तरीके से बता रही थीं, उनके चेहरे की खुशी देखकर अरुणिमा के चेहरे पर भी एक खुशनुमा मुस्कान थी। ये सच में बहुत खास पल रहा होगा। जब अरुणिमा उनकी बात सुन रही थी तो वो देख सकती थी कि अपनी बातें बताते हुए निर्मला जी कितनी खुश नजर आ रही हैं। और ये बात भी तो उतनी ही खुशी की है। किसी भी औरत के लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं होता जब वो अपने बच्चों को अपने अंदर महसूस करती है। जिस दिन उसका बच्चा दुनिया में आता है, उस दिन ऐसा लगता है कि सिर्फ बच्चे का ही नहीं बल्कि औरत का भी एक नया जन्म हुआ है। लेकिन अरुणिमा उन नसीब वाली औरतों में से नहीं थी जो खुद के लिए ये खुशियां चाहती हैं, बल्कि वो तो यही दुआ करती थी कि उसकी जिंदगी में कभी ये दिन आए ही ना और ना ही कभी कोई मासूम इस दुनिया में उसके जरिए आए। बातें करते हुए और एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटते हुए आखिरकार रात का एक पहर गुजर जाता है। रात के करीब 12 बजे मिस्टर राय अपने परिवार को लेकर वापस जा रहे थे। उन्होंने आस्तिक के साथ हाथ मिलाया और निर्मला जी अरुणिमा के गले लग गईं। उसके बाद वो लोग अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वहीं पर नकुल, जो आस्तिक से हाथ मिला रहा था, उसकी नजर अरुणिमा की तरफ चली जाती है। अरुणिमा उसकी नजरों को महसूस करके जल्दी से आस्तिक की बाजू पकड़कर उसके पीछे खुद को छुपाने की कोशिश करती है। आस्तिक से हाथ मिलाने के बाद नकुल ने अरुणिमा को देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, फिर मिलेंगे अरुणिमा जी। अरुणिमा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हल्का सिर हिला देती है और अपने दोनों हाथ जोड़कर उसके नमस्ते का जवाब देती है। परिवार वहां से जा चुका था। उनके जाने के बाद अरुणिमा ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने जाने के लिए कदम बढ़ाया, वैसे ही आस्तिक ने उसकी कलाई पकड़ ली और अगले ही पल उसे अपने करीब खींच लिया। अरुणिमा एकदम से हैरान रह गई और वो आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक की आंखों में उसे फिर से वही जुनून नजर आने लगा। उसने अरुणिमा की कमर कसकर अपने करीब कर ली और उसकी आंखों में देखकर बोला, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है जान, चलो तुम्हें तुम्हारी एक्टिंग के लिए इनाम दिया जाए। अरुणिमा समझ गई कि आस्तिक क्या कहना चाह रहा है। वो उसे कमरे में ले जाकर एक बार फिर से उसके साथ लव मेक करने के लिए कह रहा है। हमेशा की तरह अरुणिमा इनकार नहीं कर सकती थी। उसे फिर से आस्तिक को बर्दाश्त करना था। आज की रात फिर से इस दर्द और तकलीफ में गुजरने वाली थी। अरुणिमा ने खुद को मजबूत कर लिया और अगली सुबह का इंतजार करने लगी, इस उम्मीद के साथ कि आने वाली सुबह शायद कोई उम्मीद की नई किरण लेकर आए। अगली सुबह अरुणिमा अभी अभी हॉल में आई थी। उसे बाहर गार्डन में कुछ काम था, पर जैसे ही वो वॉश बेसिन के पास अपने मिट्टी से सने हाथ धोने के लिए बढ़ रही थी, तभी दरवाजे से एक आवाज आई, ए नौकरानी, सुनो, मालिक को बुलाओ। अरुणिमा के कदम रुक गए। वो हैरानी से पलटकर दरवाजे पर खड़ी उस 22 साल की लड़की को देखने लगी, जो नील लेंथ ड्रेस में उसके दरवाजे पर खड़ी थी। अरुणिमा ने उसे हैरानी से देखा, क्योंकि वो उसे पहचानती नहीं थी। अरुणिमा ने उलझन में पूछा, आप कौन? वो लड़की स्टाइल से अंदर आई और अरुणिमा के सामने खड़े होते हुए बोली, मैं वो हूँ जो इस घर के वारिस को जन्म देने वाली हूँ।